एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे मध्यकालीन विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने सोच की दो बड़ी धाराओं, आस्था और तर्क, इनके बीच एक बहुत ही शानदार पुल बनाया। हम बात कर रहे हैं थॉमस एक्विनास की।
जी हाँ, वाकई एक असाधारण शख्सियत। 13वीं सदी की बात है जब अरस्तु का दर्शन यूरोप में, कह सकते हैं, दोबारा दस्तक दे रहा था और कई लोगों को वो ईसाई आस्था के लिए एक खतरा सा लग रहा था।
अच्छा,
पर एक्विनास ने उसे गले लगाया। उन्होंने दिखाया कि भाई, तर्क और आस्था कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य को समझने के दो अलग अलग मगर एक दूसरे के पूरक रास्ते हैं।
और उनको बड़े दिलचस्प उपनाम भी मिले थे, है ना? जैसे विचारों की गहराई के लिए एंजेलिक डॉक्टर, मतलब देवदूतीय ज्ञानी। पर शुरुआती दिनों में थोड़े शांत स्वभाव के थे, शायद तो मजाक में डम्ब ऑक्स यानी मूक बैल भी कहा गया।
हाँ, वो कहानी भी है।
तो आज इस ज्ञान गोष्ठी का मकसद यही है कि एक्विनास के विचारों की थोड़ी तह तक जाएं और ये समझें कि सदियों बाद भी वो हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं।
बिल्कुल, तो शुरुआत उनके दौर से करते हैं ना। एक्विनास थे 13वीं शताब्दी में, जिसे हम उच्च मध्य युग कहते हैं। ये यूरोप के लिए आप कहिए एक बड़ी बौद्धिक जागृति का समय था। पेरिस जैसे शहर, वहां विश्वविद्यालय खुल रहे थे, ज्ञान के नए केंद्र बन रहे थे।
और इसी माहौल में सुना है अरस्तु के विचार, जो लगभग भुला दिए गए थे, वो फिर से सामने आए, खासकर अरबी अनुवादों के जरिए।
बिल्कुल सही। इसमें इब्न रुश्द, जिन्हें एवरोस कहते हैं, और इब्न सीना यानी एविसीना, इन जैसे इस्लामी दार्शनिकों का काम बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ही अरस्तु को यूरोप में फिर से जिंदा किया, कह सकते हैं। लेकिन इससे एक चुनौती भी खड़ी हुई होगी।
हाँ, बहुत बड़ी चुनौती कि अरस्तु का दर्शन, जो पूरा तर्क और अनुभव पर आधारित था, उसको ईसाई धर्मशास्त्र की जो आस्था है, जो रहस्य है, उनके साथ कैसे मिलाया जाए।
सही, ये उस वक्त का सबसे बड़ा बौद्धिक सवाल था, समझ लीजिए।
जाहिर है वो अकेले नहीं थे इस सोच विचार में। उनके गुरु अल्बर्टस मैग्नस का नाम आता है
जी,
और सेंट बोनावेंचर जैसे विचारक भी थे शायद।
हाँ, अल्बर्टस मैग्नस तो खुद अरस्तु के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने ये एक्विनास की प्रतिभा को पहचाना भी। दूसरी तरफ, हाँ, सेंट बोनावेंचर जैसे फ्रांसिस्कन विचारक थे, वो ज्यादा ऑगस्टीन की पारंपरिक राह पर चलते थे, मतलब आस्था पर ज्यादा जोर।
अच्छा,
तो ये बौद्धिक रूप से बहुत ही जीवंत, बहुत डायनामिक समय था। कैथोलिक चर्च था, डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन जैसे नए धार्मिक संघ उभर रहे थे, और यहाँ तक कि मैमोनाइट्स जैसे यहूदी विचारकों के साथ भी विचारों का टकराव और संवाद दोनों चल रहा था।
ऐसे माहौल में एक्विनास का जन्म हुआ, एक कुलीन परिवार में, लेकिन उनकी राह कुछ और ही निकली।
जन्म हुआ लगभग 1225 में इटली के रोकैसिका महल में। परिवार तो चाहता था कि वो चर्च में कोई ऊंचा पद हासिल करे, इसीलिए बचपन में उन्हें मोंटे कैसिनो के बेनेडिक्टिन मठ भेज दिया गया था।
लेकिन नेपल्स विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए कुछ बदला।
हाँ,
उनका झुकाव डोमिनिकन ऑर्डर की तरफ हो गया, है ना?
हाँ,
जो शायद ज्यादा बौद्धिक था।
हाँ, वो नया ऑर्डर था जो अध्ययन और उपदेश पर ज्यादा केंद्रित था, बौद्धिक रूप से काफी सक्रिय।
और परिवार इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। सुनने में आता है कि काफी नाटकीय विरोध हुआ था।
अरे, बहुत ज्यादा। उनके भाइयों ने तो उन्हें अगवा तक कर लिया था।
सच में?
हाँ, और साल भर से ज्यादा घर में ही कैद रखा ताकि वो अपना मन बदल लें। एक कहानी तो ये भी है कि उन्हें बहकाने के लिए कोई वेश्या भेजी गई थी।
अच्छा,
जिसे उन्होंने, कहते हैं, जलती हुई लकड़ी दिखाकर भगा दिया। ये उनका दृढ़ संकल्प दिखाता है। खैर, आखिरकार वो डोमिनिकन बनने में कामयाब हो ही गए।
इसी दृढ़ता ने शायद उन्हें आगे भी बढ़ाया होगा। फिर वो अल्बर्टस मैग्नस के शिष्य बने और वहीं से वो डम ऑक्स वाली कहानी जुड़ी है। सही कहा ना?
हाँ, वही से। कहते हैं कि क्लास में वो बहुत शांत रहते थे, गहरे चिंतन में डूबे हुए, तो बाकी छात्रों ने धीमी बुद्धि का समझकर मजाक में मूक बैल बुलाने लगे।
हाँ,
तब उनके गुरु अल्बर्टस मैग्नस ने कहा था, तुम इसे मूक बैल कहते हो, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक दिन ये बैल ऐसा गरजेगा कि इसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी।
और वो भविष्यवाणी तो बिल्कुल सच हुई। उनका पूरा करियर फिर पेरिस और इटली में शिक्षण और लेखन पर ही केंद्रित रहा।
सही कहा, वो पेरिस विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के मास्टर बने और उनका लेखन कार्य, अरे, अद्भुत रूप से विपुल था। बहुत लिखा उन्होंने। 1274 में एक चर्च काउंसिल के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही उनका निधन हो गया।
उनके लेखन की बात करें तो दिमाग में सबसे पहले सुम्मा थियोलॉजिया का नाम आता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा संसार हो। इसका क्या महत्व है?
सुम्मा थियोलॉजिया, मतलब थियोलॉजिकल समरी, ये उनका सबसे महत्वाकांक्षी काम है, सबसे बड़ा काम। हालांकि अधूरा रह गया वो।
अच्छा,
इसे आप मध्यकालीन विचार का एक महाविश्वकोश कह सकते हैं। इसमें उन्होंने सवाल जवाब की शैली में ईश्वर, सृष्टि, मनुष्य, नैतिकता, मोक्ष, मतलब शायद ही कोई विषय छोड़ा हो, सब पर व्यवस्थित ढंग से लिखा। उनका लक्ष्य था ईसाई धर्मशास्त्र और अरस्तु के तर्कसंगत दर्शन का एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा तैयार करना।
और यहीं पे उनका वो प्रसिद्ध विचार भी आता है ना कि अनुग्रह प्रकृति को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे पूर्ण बनाता है। ग्रेस परफेक्ट्स नेचर।
बिल्कुल, यहीं पर ये विचार बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है। मतलब ईश्वरीय कृपा जो है वो मानवीय तर्क या क्षमताओं को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें और बेहतर और उन्नत बनाती है।
ये तो उस समय के लिए काफी क्रांतिकारी विचार रहा होगा।
हाँ बिल्कुल।
और उनकी एक और अहम रचना है सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स, ये उससे कैसे अलग थी?
हाँ, सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स मतलब समरी अगेंस्ट द जेंटाइल्स, वो थोड़ी अलग है। वो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो ईसाई आस्था को नहीं मानते थे, जैसे मुस्लिम और यहूदी विचारक।
अच्छा, संवाद के लिए।
जी, इसमें अक्विनस ने ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि सिर्फ तर्क के जरिए, मतलब बिना आस्था के भी, ईश्वर और नैतिक सच्चाइयों के बारे में कितना कुछ जाना जा सकता है। ये एक तरह से संवाद का प्रयास था जो केवल आस्था पर आधारित नहीं था।
इसका मतलब है कि वो अरस्तु के दर्शन को, जिसे कई लोग शायद विधर्मी या खतरनाक मानते थे, उसे वो ईसाई सत्य को समझने और समझाने के लिए एक साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उनके अरस्तु पर लिखे भाष्य भी शायद इसी दिशा में एक कदम थे।
निश्चित रूप से, उन्होंने अरस्तु के लगभग सभी प्रमुख कामों पर बहुत विस्तार से टीकाएं लिखीं, कॉमेंट्रीज। ये सिर्फ अनुवाद या सारांश नहीं थे, उन्होंने अरस्तु के विचारों को ईसाई नजरिए से देखा, ढाला, उनकी व्याख्या की और जहां जरूरत लगी वहां आलोचना भी की।
अच्छा,
उन्होंने एक तरह से अरस्तु को मध्यकालीन ईसाई दुनिया के लिए पचाने लायक बना दिया। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने अरस्तु की तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स को अपनाया और उसे विकसित भी किया। खासकर वो जो अंतर है किसी चीज के सार, एसेंस, वो चीज क्या है, और उसके अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, कि वो चीज है के बीच।
सार और अस्तित्व, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, मतलब उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर को छोड़कर हर बनाई हुई चीज में उसका सार, वो क्या है, और उसका अस्तित्व, उसका होना, अलग अलग चीजें हैं। केवल ईश्वर ही है जिसमें सार और अस्तित्व एक ही हैं। मतलब ईश्वर का होना ही उसका सार है, वो अपने आप में पूर्ण है।
ये तो काफी गहरा है, सार और अस्तित्व का फर्क।
और यहीं से शायद उनके नैतिकता के सिद्धांत, जिसे प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉ कहते हैं, उसकी तरफ भी रास्ता जाता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक्विनास का मानना था कि ईश्वर ने दुनिया को एक तर्कसंगत व्यवस्था, एक ऑर्डर दिया है, और हम मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था में जो छुपे हुए नैतिक सिद्धांत हैं उनको पहचान सकते हैं।
अच्छा,
यही प्राकृतिक कानून है। ये एक तरह की यूनिवर्सल मॉरल कोड है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है और हमें मानवीय उन्नति मतलब ह्यूमन फ्लरिशिंग की ओर ले जाती है।
तो इसका मतलब हुआ कि सही गलत जानने के लिए सिर्फ धार्मिक ग्रंथों पर ही निर्भर रहना जरूरी नहीं है, हमारा तर्क भी हमें रास्ता दिखा सकता है।
हाँ, एक्विनास के अनुसार तर्क हमें बुनियादी नैतिक सच्चाइयों तक पहुंचा सकता है, और उनका कहना था कि कोई भी इंसानी कानून तभी न्यायपूर्ण है, तभी सही है, जब वो इस प्राकृतिक कानून के मुताबिक हो। अगर कोई कानून प्राकृतिक कानून के खिलाफ जाता है तो वो एक्विनास की नजर में सच्चा कानून नहीं है बल्कि कानून का बिगड़ा हुआ रूप है।
अरे वाह।
उनका एक कथन भी है, तर्क की आज्ञा की अवहेलना करना ईश्वर की आज्ञा की निंदा करने के बराबर है।
अच्छा,
ये दिखाता है कि वो तर्क को कितना ऊंचा स्थान देते थे, उसे ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा मानते थे।
ये वाकई सोच बदलने वाला नजरिया है, खासकर उस दौर के हिसाब से। ऑगस्टीन जैसे जो पहले के विचारक थे उनसे ये कितना अलग था?
हाँ, काफी अलग था। ऑगस्टीन जो प्लेटो से ज्यादा प्रभावित थे, वो भौतिक दुनिया और मानवीय तर्क की सीमाओं पर ज्यादा जोर देते थे। उनके लिए आस्था सबसे ऊपर थी और दर्शन बस उसकी सेवा में था।
एक्विनास ने अरस्तु से प्रेरणा ली, उन्होंने प्राकृतिक दुनिया की अच्छाई और मानवीय तर्क की क्षमता को ज्यादा सकारात्मक रूप से देखा।
अच्छा,
उन्होंने माना कि ये जो प्राकृतिक दुनिया है इसका अध्ययन करना भी ईश्वर को जानने का एक रास्ता हो सकता है।
और जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, वो एवरोज और मेमोनाइट जैसे इस्लामी और यहूदी विचारकों के काम से भी वाकिफ थे। जी हाँ, बिल्कुल, वो उनके काम से परिचित थे और एक तरह के बौद्धिक संवाद में थे उनके साथ, क्योंकि वो लोग भी आस्था और अरस्तुवादी तर्क के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश पहले ही कर रहे थे।
तो एक्विनस की विरासत सिर्फ कैथोलिक चर्च तक ही सीमित नहीं रही होगी फिर?
बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सच है कि उनके दर्शन को थॉमिज्म कहते हैं और वो कैथोलिक चर्च का आधिकारिक दर्शन जरूर बना, खासकर 19वीं सदी के अंत में। और 20वीं सदी में जैक्स मेरिटैन और एटीएन गिल्सन जैसे विचारकों ने नियो थॉमिज्म के रूप में इसे नई जान भी दी। लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा व्यापक रहा है,
जैसे कि कानून और राजनीति के क्षेत्र में, जैसा आप कह रहे थे।
हाँ बिल्कुल, उनके प्राकृतिक कानून के सिद्धांत ने पश्चिमी कानूनी सोच पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। आप ह्यूगो ग्रोटियस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों से लेकर आज के मानवाधिकारों की बहस तक देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक्विनास के विचारों की गूंज सुनाई देती है।
अच्छा,
उनके ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो 5 तर्क हैं, द 5 वेज, वो आज भी दर्शन शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं, उन पर बहस होती है।
हाँ, सुना है उनके बारे में।
उनकी जो सद्गुण नैतिकता है, वर्चू एथिक्स, उसने आधुनिक नैतिक दर्शन को भी प्रेरणा दी है। यहां तक कि न्यायपूर्ण युद्ध, मतलब जस्ट वॉर का जो सिद्धांत है, उसमें भी उनके विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है।
वो धर्म और धर्मनिरपेक्ष विचार के बीच संवाद की एक मिसाल बने हुए हैं आज भी।
उनके कुछ कथन भी बहुत शक्तिशाली लगते हैं। जैसे वो कहते हैं, मनुष्य के उद्धार के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। यह जानना कि उसे क्या विश्वास करना चाहिए, यह जानना कि उसे क्या इच्छा करनी चाहिए, और यह जानना कि उसे क्या करना चाहिए। ये तो आस्था, आशा और कर्म तीनों को जोड़ता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके लिए ज्ञान, इच्छा और कर्म, ये अलग अलग नहीं थे बल्कि जुड़े हुए थे।
एक और बहुत गहरा कथन है, जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वे हमें बताती हैं कि हम क्या हैं। मतलब हमारी इच्छाएं, हमारे मूल्य, यही हमारे चरित्र को बनाते हैं।
एक और कथन है जिसकी प्रामाणिकता पर थोड़ी बहस बताई जाती है, पर वो एक्विनास की सोच से मेल खाता लगता है। जिसके पास आस्था है उसके लिए कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है, जिसके पास आस्था नहीं है उसके लिए कोई स्पष्टीकरण संभव नहीं है। ये शायद आस्था और तर्क की अपनी अपनी सीमाओं की ओर इशारा करता है।
हाँ, ये कुछ हद तक उस विचार को दर्शाता है कि कुछ सत्य ऐसे हो सकते हैं जो तर्क की पहुंच से शायद परे हों और उन्हें केवल आस्था से ही ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन उनका सबसे प्रेरक कथन शायद वो है जो डोमिनिकन ऑर्डर का आदर्श वाक्य भी बना, केवल चमकने से बेहतर है रोशन करना, केवल चिंतन करने से बेहतर है दूसरों को चिंतित सत्य प्रदान करना। कॉन्टेम्प्लारे इट कॉन्टेम्प्लाटा आलिस त्रादरे।
वाह, मतलब ज्ञान को सिर्फ अपने तक ना रखकर उसे बांटना, ये तो आज भी कितना प्रासंगिक है।
बिल्कुल,
लेकिन क्या एक्विनास के विचारों की कभी आलोचना नहीं हुई? सबने मान लिया उन्हें?
नहीं नहीं, आलोचना तो उनके समय में भी हुई। जैसा हमने कहा, कुछ रूढ़िवादी धर्मशास्त्री थे जो अरस्तु के प्रभाव से डरते थे। उनकी मृत्यु के कुछ साल बाद ही पेरिस के बिशप ने उनके कुछ दार्शनिक प्रस्तावों की निंदा भी कर दी थी, हालांकि बाद में वो निंदा वापस ले ली गई।
अच्छा, और आज के दौर में क्या आलोचनाएं हैं?
आज के दौर में आधुनिक दार्शनिक उनके ईश्वर के अस्तित्व के जो तर्क हैं उनमें तार्किक कमियां निकालते हैं। फिर उनकी निर्भरता अरस्तु के उस विज्ञान पर थी जो अब जाहिर है पुराना पड़ चुका है। नारीवादी विचारक महिलाओं के बारे में उनके जो विचार हैं उनकी आलोचना करते हैं, जो निश्चित रूप से उनके समय की उपज थे।
सही।
कुछ मुक्ति धर्मशास्त्री, लिबरेशन थियोलॉजियंस, मानते हैं कि उनका जो राजनीतिक दर्शन है वो मौजूदा सत्ता संरचनाओं को कुछ ज्यादा ही स्वीकार कर लेता है। और ये सवार तो हमेशा रहता ही है कि क्या उनका दर्शन उनकी धार्मिक मान्यताओं से पहले से ही तय हो गया था, मतलब वो निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही मानकर चल रहे थे।
ये भी एक अहम सवाल है। खैर, इन गंभीर बहसों के बीच उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। डमॉक्स और एंजेलिक डॉक्टर वाले उपनाम तो हैं ही।
हाँ।
और ये भी कहा जाता है कि उनका डील डॉल भी काफी भारी भरकम था।
हाँ, शारीरिक रूप से वो बड़े थे ऐसा कहा जाता है, पर स्वभाव से शांत और विनम्र थे। उनकी याददाश्त के बारे में भी कहते हैं कि असाधारण थी कि एक ही समय में कई लोगों को अलग अलग विषयों पर लिखवा सकते थे।
अरे वाह।
और उनके परिवार द्वारा अपहरण की कहानी तो है ही, जो उनके डोमिनिकन बनने के दृढ़ निश्चय को दिखाती है।
और उनके जीवन के अंत का वो रहस्यमय अनुभव जिसके बाद उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया और अपने सारे काम को भूसे के ढेर जैसा बता दिया, ये बात थोड़ी चौंकाती है एक ऐसे विचारक के लिए जो तर्क पर इतना जोर देता था।
हाँ, ये सचमुच रहस्यमय है और ये हमें याद दिलाता है कि एक्विनस सिर्फ एक तार्किकवादी दार्शनिक नहीं थे, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अनुभव वाले व्यक्ति भी थे। कुलीन परिवार से होने के बावजूद उन्होंने बेहद सादा तपस्वी जीवन जिया, पूरी तरह से ज्ञान और शिक्षण को समर्पित।
तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना चाहें तो एक्वेनस की सबसे बड़ी देन क्या मानी जाए, उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था?
मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि उन्होंने दो अलग अलग लगने वाली दुनियाओं, यूनानी तर्क की दुनिया और ईसाई आस्था की दुनिया को एक विशाल और सुसंगत बौद्धिक ढांचे में सफलतापूर्वक मिला दिया। उन्होंने ये दिखाया कि आस्थावान होना अंधविश्वासी होना नहीं है, और तर्क का इस्तेमाल आस्था को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे मजबूत कर सकता है। उन्होंने नैतिकता और राजनीति के लिए भी एक ऐसा तर्कसंगत आधार दिया जो सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर ही निर्भर नहीं था।
और आज के लिए उनका स्थायी महत्व क्या है? आज वो क्यों प्रासंगिक हैं?
उनका काम एक स्थायी बौद्धिक पुल की तरह है, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक सोच के बीच, प्राचीन और मध्यकालीन सोच के बीच। आज वो इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि गहरी धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतिबद्धता के साथ भी उच्चतम स्तर की बौद्धिक ईमानदारी और कठोरता संभव है। वो दिखाते हैं कि अस्तित्व, नैतिकता, जीवन का उद्देश्य जैसे बड़े सवालों पर तर्क करना, सोचना विचारना, ये आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का विरोधी नहीं है बल्कि उसका साथी हो सकता है।
तो श्रोताओं के लिए अंत में कोई एक विचार छोड़ना चाहे?
देखिए, आज की दुनिया अक्सर विचारों, विश्वासों और पहचानों के आधार पर बंटी हुई नजर आती है। विज्ञान बनाम धर्म, तर्क बनाम भावना, इस तरह के विभाजन हमें बहुत आम लगते हैं। एक्विनास का जीवन और उनका काम हमें एक तरह से चुनौती देते हैं। क्या हम ज्ञान के विभिन्न स्रोतों, जैसे तर्क है, अनुभव है, आस्था है, अंतर्ज्ञान है, क्या हम इनके बीच सामंजस्य खोजने का प्रयास कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि जो सच्चाइयां हमें अलग अलग या विरोधी लगती हैं वो असल में एक बड़ी, ज्यादा जटिल सच्चाई का हिस्सा हों?
एक्वाइनस का रास्ता शायद ये दिखाता है कि पुल बनाना शायद दीवारों को गिराने से ज्यादा फलदायी हो सकता है। शायद असली चुनौती पक्ष चुनना नहीं बल्कि समग्रता को, पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करना है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।